नमस्कार भारत, तारीख 24 अक्टूबर, दिन सोमवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में टूट की आशंका के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने बुलाई बैठक। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल बोले,
विवाद मीटिंगों से नहीं सुलझता, न पंचायतों से सुलझता है। विवाद नेताजी को सबको बैठा कर सुलझाना पड़ेगा। जब परिवार का मामला तो नेताजी क्यों नहीं तीनों को बुलाते हैं? और जब तीनों कहते हैं नेताजी जो आदेश करे हम मानेंगे।
पिता पुत्र चाचा के बीच झूल रही समाजवादी पार्टी टूटेगी या फिर बचेगी, करेंगे विश्लेषण।
परिस्थिति जिस हद तक विकसित हो गई है उसमें समाजवादी पार्टी के विभाजन को कोई रोक नहीं सकता है। अब बहस का प्रश्न ये है सरकार का क्या किया जाए। पार्टी तो विभाजित खड़ी हुई है, लेकिन कार बचेगी या जाएगी।
मोदी आज होंगे बनारस में और पुलिस की फायरिंग में ग्रामीणों की मौत के विरोध में विपक्षी दलों ने बुलाया झारखंड बंद। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत के उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित करने और शिवपाल यादव और उनके समर्थक मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी में संकट गहरा गया है। मौजूदा संकट के बीच आज पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक बैठक बुलाई है। एक गोपनीय जांच में बीबीसी ने पाया है कि तुर्की में कपड़ा उद्योग में सीरियाई प्रवासी बच्चों को गैरकानूनी तरीके से काम पर लगाया जाता है। टेलीविजन कार्यक्रम पैनोरामा के लिए काम कर रही बीबीसी की टीम को पता चला है कि कपड़ा उद्योग में बिना वर्क परमिट के कई किशोर काम करने के तय समय से ज्यादा घंटों तक काम करते हैं। इनमें से एक किशोर 15 साल के हैं। ये ब्रितानी कंपनी मार्क्स एंड स्पेंसर्स और ऑनलाइन कपड़ों के खुदरा व्यापारी ASOS के लिए कपड़े बनाते हैं। ASOS की आचार संहिता के अनुसार यदि सप्लायर 16 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेते हैं तो उन्हें इसके बारे में जानकारी देनी होगी और उन्हें उत्पादन की जगहों से दूर रखना होगा। कपड़ों के दोनों ही ब्रांड कहते हैं कि वो बच्चों के शोषण और श्रम के खिलाफ हैं। इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले इस्लामी चरमपंथी समूह से छुड़ाने के लिए छिड़े अभियान में रविवार को तुर्की भी शामिल हो गया है। तुर्की ने कुर्द पेशमर्ग लड़ाकों के साथ बाशिका शहर में इस्लामिक स्टेट पर हमले किए। तुर्की ने कहा कि कुर्द पेशमर्ग लड़ाकों ने उनसे मदद मांगी थी। बाशिका शहर उस सैन्य अड्डे के नजदीक है जहां तुर्की सेना अरब और कुर्द सुन्नी मुस्लिम लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रही है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा, कुर्द पेशमर्ग सैनिकों ने IS को बाशिका शहर से खदेड़ने के लिए हमला किया है। उन्होंने बाशिका बेस पर हमारे सैनिकों से मदद मांगी थी, इसलिए हम तोपखाने और टैंकों के जरिए उनकी मदद कर रहे हैं। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में एक टूर बस एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार हादसे में 31 लोग घायल हुए हैं। हादसे में बचे लोगों का कहना है कि जब दुर्घटना हुई उस वक्त लोग सो रहे थे। ये बस कैसीनो से लॉस एंजल्स की तरफ आ रही थी। हेती में अधिकारियों का कहना है कि देश के उत्तर में स्थित RK की जेल से भागे कैदियों में से कम 150 कैदियों को अभी पकड़ा नहीं जा सका है। सुरक्षा बल घरों और नावों की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल 10 कैदी ही पकड़े जा सके हैं। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के यादव परिवार की तकरार जारी है। कल दिनभर शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल चलता रहा। पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चचा शिवपाल यादव और उनके समर्थक मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। चंद घंटे बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पार्टी महासचिव डॉक्टर रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। डॉक्टर रामगोपाल ने कल सुबह ही अखिलेश के समर्थन में एक पत्र जारी किया था। पार्टी में टूट की आशंका के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव अपना रुख स्पष्ट करेंगे। यादव परिवार में मचे घमासान पर सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
वैसे तो समाजवादी पार्टी में पिछले 1.5 महीने से घमासान मचा हुआ है। लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तेजी से घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है उससे अब सिर्फ ये कयास लग रहे हैं कि पार्टी टूटेगी या बचेगी। रविवार को सुबह से ही पार्टी में हलचल रही, लगातार बैठकें हुई और बर्खास्तगी के दौर चले। पहले शिवपाल यादव समेत कुछ मंत्रियों की बर्खास्तगी हुई और दोपहर बाद रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शिवपाल यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी।
प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए गए, पार्टी से भी हटाए गए और पार्टी से भी निष्कासित किए गए। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं।
वहीं देर शाम बर्खास्त मंत्रियों ने मुलायम सिंह के घर पर देर रात तक बैठक की और इस बारे में चर्चा हुई। उधर इस ताजा घटनाक्रम को लेकर अब पार्टी में भी खुले तौर पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री आजम खान कहते हैं कि ये तो होना ही था।
हमने महसूस किया हमेशा कि ऐसा एक दिन आएगा जरूर, दुखद है बहुत। इसे जो समझदार लोग हैं पार्टी के, दूरदर्शी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास था ये दिन आएगा।
पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उससे आम कार्यकर्ता भी मायूस हैं। वहीं आज की अहम बैठक के लिए पार्टी कार्यालय में जोरदार तैयारियां की गई हैं। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आते हैं कि नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने कल ऐसे संकेत दिए थे कि वो बैठक में शामिल होंगे। बावजूद इसके जानकारों का कहना है कि पार्टी में विभाजन को रोक पाना अब मुश्किल है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे कहते हैं,
अगर विभाजन बच गया तो केवल चमत्कार ही होगा और चमत्कारों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया सकता। परिस्थिति जिस हद तक विकसित हो गई है उसमें समाजवादी पार्टी में विभाजन को कोई रोक नहीं सकता है। अब बहस का प्रश्न ये है, यानी विचार इस बात की कर रहे होंगे वो लोग, सरकार का क्या किया जाए। पार्टी तो विभाजित खड़ी हुई है, लेकिन सरकार बचेगी या जाएगी, या अखिलेश यादव जाएंगे राज्यपाल के पास और सिफारिश करेंगे विधानसभा भंग करने की ताकि काम चलाऊ मुख्यमंत्री हो सके, और किसके साथ कितने विधायक हैं ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है।
बहरहाल समाजवादी पार्टी टूटती है या फिर नेताओं के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता है, आज इस पर से पर्दा उठ सकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में पार्टी और उसके नेता कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उसी आत्मविश्वास के साथ उतर पाएंगे जैसा कि कुछ महीनों पहले वो तैयार थे, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अगर घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो अब समाजवादी पार्टी में दो खेमे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ पिता और चचा दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर पुत्र अखिलेश और रामगोपाल यादव साथ दिख रहे हैं। असमंजस में फंसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अब समर्थन या फिर विरोध की बातें कहनी शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद नरेश अग्रवाल से बात की हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने और पूछा कि पार्टी टूटेगी या फिर बचेगी।
शायद हमारे पार्टी के बड़े नेता अभी तक जनता की नब्ज को समझ नहीं पाए हैं। अगर जनता की नब्ज को समझा होता तो चाहे स्थिति भी नहीं खड़ी होती। और पार्टी को सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री को इग्नोर करके इस समय पार्टी को खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और पार्टी के जो नेता सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम धरातल में ला देंगे, अखिलेश यादव की छवि खराब कर देंगे, वो उनकी गलतफहमी है। जनता के बीच में अखिलेश सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। ये ठीक है नेताजी का हम सब सम्मान करते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग पार्टी के परिवार को तोड़ रहे हैं उस चीज को पार्टी को समझना चाहिए।
तो ये कौन लोग हैं?
आज मुख्यमंत्री ने खुद आरोप लगाया है। जिस व्यक्ति के आरोप लगाया है आप सभी ने उस नाम को सुन लिया है, हमारे मुंह से क्यों कहलाना चाहेंगे। अगर मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री भी है मुलायम सिंह का बेटा भी है, अगर उसने ये आरोप लगाया तो पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए, आरोप सही है गलत।
चुनाव सामने है, बार बार ये दिखाने की कोशिश की जाती है, ये बयान दिए जाते हैं कि परिवार में सब एक है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी कह दिया गया कि अखिलेश यादव होंगे, उसके बाद दिक्कत कहाँ रह गई है?
तो यही तो हम भी कह रहे हैं, नेताजी आपको सब नेता मान रहे हैं, अखिलेश को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, आप सब मिलकर टिकट बांटिए, जो लड़के निकालेंगे उनको वापस करिए, चुनाव मैदान में आइए, कहाँ की लड़ाई है।
और जब ये आरोप लगाया जाता है कि प्रोफेसर रामगोपाल पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं, तो इन आरोपों के बाद आपको लगता है कि ये खाई जो बन गई है वो पट सकेगी?
देखिए, इन आरोपों को मैंने पूरी तरह खारिज किया है। मैं रामगोपाल जी को व्यक्तिगत जानता हूँ, मैं बराबर उनके साथ रहता हूँ। रामगोपाल जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों से नहीं मिल सकते। राजनीति में ठीक है दीवारें खिंचती हैं, लेकिन राजनीति में बहुत से विरोधी मिलते भी एक साथ हैं, तो कब कौन मिल जाए ये असंभव नहीं है।
पार्टी की बड़ी अहम मीटिंग बुलाई गई है, आपको लगता है कि इस मीटिंग के जरिए ये विवाद सुलझ सकता है?
देखिए, ये विवाद मीटिंगों से नहीं सुलझता, न पंचायतों से सुलझता है। अभी इन बैठकों से विवाद नहीं सुलझेगा, विवाद नेताजी को सबको बैठाल के सुलझाना पड़ेगा। जब परिवार का मामला तो नेताजी क्यों नहीं तीनों को बुलाते हैं? और जब तीनों कहते हैं नेताजी जो आदेश करें हम मानेंगे, तो नेताजी सीधे सीधे आदेश करें और फिर जो ना माने तो फिर हम लोग उनसे बात करें।
अखिलेश यादव के समर्थन में बोल रहे थे नरेश अग्रवाल। वहीं अखिलेश मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए मंत्री नारद राय का आरोप है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
सरकार के मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको सलाह देने वाले लोग पता नहीं कैसे वो जरूर सलाह देते हैं कि जब जो मन में आता है फैसला ले लेते हैं।
सलाह देने वाले लोग दरअसल हैं कौन, किन के बारे में आप कह रहे हैं?
अब जो लोग भी हों, क्योंकि अगर अकेले अपनी राय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है तब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो बात निकल के आई कि अमर सिंह के समर्थन में आए, अमर सिंह के साथ रहने वाले, और समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, गार्जियन है, जिसको पार्टी में शामिल कर लेते हैं भले ही वो नेताजी को बोला हो, पार्टी को कुछ बोला हो, उसको हम लोग हमेशा सिरोधार करते रहने का काम किया। बहुत से लोग पार्टी में है जिन लोगों ने समय समय पर नेताजी को दल को कोसने का काम किया, लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए नेताजी ने लोगों को माफी किया और पार्टी बड़ी बनाने का काम किया।
नेताजी से आपकी मुलाकात भी हुई शाम को, क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई?
देखिए माननीय नेताजी ने आज कोई संकेत नहीं दिया, हम लोगों को भरोसा धारण दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोगों को बिना वजह बर्खास्त किया गया है। हम लोगों को भरोसा दिलाया घबराना नहीं, उन्होंने चौपाई भी कही, धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परीक्षा जारी, ये समाजवादी पार्टी पर आफत है, इसमें धैर्य से काम लेना है और कौन अपना है कौन गैर है इसकी पहचान करनी है।
ये थे बर्खास्त मंत्री नारद राय। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने डॉक्टर रामगोपाल यादव को बाहर करने के लिए जो आरोप लगाए उनमें से एक आरोप ये भी था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपों को पूरी तरह से गलत बताती है। समाजवादी पार्टी की कलह पर बीजेपी क्या सोच रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा से बात की वात्सल्य राय ने।
प्रश्न ये है कि जब परिवार सरकार बन जाए और सरकार परिवार हो तो इस प्रकार की घटनाएं होना स्वाभाविक होता है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो ये हाई प्रोफाइल फैमिली ड्रामा है इसका कहीं कहीं कोई निष्कर्ष कोई कंक्लूजन होना चाहिए और बेहतर तो ये है कि इनको फिर से जनादेश प्राप्त करना चाहिए।
डॉक्टर रामगोपाल यादव को जो पार्टी से निकाला गया तो उन पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी के साथ उनके संपर्क है, तो परिवार के इस विवाद में बीजेपी का नाम भी आ रहा है।
राजनीति में तमाम लोगों के तमाम लोगों से संबंध होते हैं लेकिन ये राजनीतिक मंतव्य नहीं होते, और जहां तक बीजेपी का है बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता, बीजेपी के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर अपनी नीति रीति सिद्धांत और केंद्र सरकार के चुनाव में मोदी जी का जो गुजरात का मॉडल था हमने 80 में से 73 सीटें जीती, हमें क्या जरूरत पड़ी किसी के परिवार में हस्तक्षेप करने की। बीजेपी को तो बिल्कुल भी इनके पारिवारिक झगड़े से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इनसे ना कोई लाभ है ना कोई नुकसान है।
क्या वाकई आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस झगड़े से कोई लाभ नहीं है?
नहीं, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर इतना मजबूत है कि कौन टूटता है कौन बिखरता है, इससे बीजेपी के जो बढ़ता हुआ जो वर्चस्व है उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा। समाजवादी पार्टी में महीनों से जारी तकरार को सुलझाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। पूरे विवाद का विश्लेषण करने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन से बात की और पूछा कि पूरा विवाद आखिरकार किस दिशा में बढ़ रहा है और क्या समाजवादी पार्टी टूटने की कगार पर है।
टूटने के संकेत बहुत क्लियर हैं और अगर इलेक्शन तक किसी तरह साथ रहे भी तो उसके बाद टूट जाएंगे। देखिए अभी तो लड़ाई कंट्रोल ऑफ द पार्टी की है, चीफ मिनिस्टर फेस की है, पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन की है, इतने डिफरेंसेस हो गए हैं कि मुझे लगता है कि पार्टी इवेंचुअली टूटेगी।
पहले जो लड़ाई चाचा भतीजे के बीच में बताई जा रही थी वो अब पिता पुत्र की लड़ाई हो चुकी है।
देखिए वो जो चाचा भतीजे वाली है वो इनफेक्ट चाचा भतीजा नहीं है, वो सारी बात शुरू हुई आफ्टर अमर सिंह जी की जब एंट्री हुई पार्टी में दोबारा से, उसके खिलाफ आजम खान साहब भी थे, रामगोपाल जी भी थे, अखिलेश सिंह जी भी थे, बट मुलायम सिंह जी ने उस समय ये डिसीजन लिया कि हमें अमर सिंह जी की जरूरत है। उसके बाद से थोड़े डिफरेंसेस बढ़े और मुख्यमंत्री जी ने एक दो बारी कहा भी है कि उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश करी। शिवपाल जी जनरली जैसा मुलायम सिंह जी चाहते हैं वैसा करते हैं, तो ये चाचा भतीजे से ज्यादा तो मुलायम सिंह जी के डिसीजंस हैं जो शिवपाल जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
जब किरणमय नंदा ने ऐलान किया मुलायम सिंह यादव के हवाले से कि पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अखिलेश यादव ही होंगे, उसके हाँ। बाद लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन फिर हाँ। उसके बाद जिस तरह से अखिलेश ने फैसला लिया, शिवपाल समेत चार मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, तो सीधे हाँ। सीधे उन्होंने एक तरह से चुनौती देने की कोशिश की है। अब आगे का रास्ता आप कैसे देख रहे हैं?
बात खाली ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे। पहली बात तो पार्टी के इतने बुरे हाल है, चीफ मिनिस्टर का क्या चेहरा कोई होगा। बात यह है, चीफ मिनिस्टर ने शुरू में भी कहा था कि अगर हमें चुनाव में जाना है और अगर मेरा भी एक एग्जाम है तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी भी से होनी। बट जैसे ही स्टेट प्रेसिडेंट बदले और शिवपाल जी आए, तो उन्होंने सबसे पहले कौमी एकता दल के साथ एक अलायंस किया। उसके बाद उन्होंने अमर मणि त्रिपाठी जी के बेटा, जो कि एक केस में उनका नाम है, उनको टिकट दिया। उसके बीच में काफी बातें ऐसी हो गई थी जिससे डिफरेंसेस बढ़ रहे थे।
एक अहम बैठक बुलाई है मुलायम सिंह यादव ने, क्या उसमें कोई सुलह का रास्ता निकलेगा?
इतनी बड़ी बैठकों में कभी भी कोई समझौते नहीं होते हैं। अगर उनका समझौता होना था, पिछले दो दिनों से पार्टी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, कई बार मुलायम सिंह जी से मिले, कई बार अखिलेश सिंह जी से मिले, मुलायम सिंह जी अभी तक कुछ बोले नहीं है पूरे प्रकरण पे, ये पता चलेगा कि वो किस मूड में है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या वो सच्ची मुच्ची अपने बेटे को एक तरह से अलग करना चाह रहे हैं, या वो अपने बेटे को साथ में लेके कोई समझौता करके चलना चाह रहे हैं।
आप उस पार्टी की ताकत को किस तरह से देखती हैं, क्या उस पर कितना असर पड़ेगा?
देखिए, समाजवादी पार्टी का आज की तारीख में तो उनको दोनों की जरूरत है, मुलायम सिंह जी की भी जरूरत है और अखिलेश सिंह जी की भी जरूरत है, क्योंकि अखिलेश सिंह एक फेस ऑफ द पार्टी है, उनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, मुलायम सिंह जी अच्छी पकड़ रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, तो डेवलपमेंट खाली अगर एक मुद्दे पे वोट पड़ते होते तो बहुत सरकारें अच्छी बन जाती। तो मुझे लगता है बहुत नुकसान होगा समाजवादी पार्टी, जो कि अच्छा खासा अगर वो गवर्नमेंट नहीं भी फॉर्म कर रही थी तो नंबर टू की तरह लोग देख रहे थे, वो शायद और पीछे आ जाएंगे।
वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण कर रही थी। अखबारों की समीक्षा के लिए हम लखनऊ चलेंगे, लेकिन एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर इस समय मैं आपको बता दूं कि कतर के पूर्व आमिर शेख खलीफा बिन हमद अल थानी की मौत हो गई है। वो 84 साल के थे। शेख खलीफा से ने कतर पर 1972 से 1995 तक शासन किया था। मौजूदा आमिर उनके पोते तामीम बिन हमद अल थानी ने देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और कार्यक्रम में इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद फिर वापस अखबारों पर आते हैं, सीधे चल रहे हैं लखनऊ। लखनऊ में समीर आत्मज मिश्र हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। समीर, आज हमने अभी तक इस पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा की है, ये बताइए कि वहाँ के जो अखबार हैं, निश्चित तौर पर दिल्ली के अखबार मैं देख पा रहा हूँ, इसी खबर से पटे पड़े हैं, वहाँ क्या कह रहे हैं?
जी मोहनलाल जी, जाहिर सी बात है लखनऊ के अखबार तो दूसरी खबर शायद में पहले पेज पर हो और अंदर के भी पन्नों पर यही खबर और इससे जुड़ी हुई खबरें और इससे इस पुराने इतिहास पृष्ठभूमि तमाम बातें अखबारों में छपी हुई हैं। नवभारत टाइम्स की बात अगर करें तो बड़ी सी हेडिंग दी है नवभारत टाइम्स ने और लिखा है कि आज बोलेंगे, आज मुलायम बोलेंगे। अखबार ने अखिलेश यादव के साथ एक खली की तस्वीर छापी है, खली जो है रेसलर है, कुश्ती लड़ते हैं, और वो कल अखिलेश यादव से ये सब जब कवायद चल रही थी उसी समय वो आए हुए थे और ये तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने शेयर की है जी। उसके बाद एक टिप्पणी छापी है नवभारत टाइम्स ने कि पिता पुत्र का रिश्ता भारी या राजनीति। हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो अखबार लिखता है शिवपाल सरकार और राम गोपाल सपा से बर्खास्त। हिंदुस्तान ने राज्यपाल का भी एक बयान छापा है कि फिलहाल राज्य में कोई भी संवैधानिक संकट नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है इसको लेकर के कल भारतीय जनता पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही ये बात की थी कि अखिलेश सरकार जो है वो अल्पमत में है, उसको विश्वास हासिल करना चाहिए सदन के अंदर। और अमर उजाला ने एक बड़ी सी हेडिंग लगाई है बर्खास्त, और फिर लिखता है शिवपाल सरकार से राम गोपाल पार्टी से। नीचे लिखा है सपा विभाजन की ओर, और खली के साथ तस्वीर अमर उजाला ने भी लगाई है और बड़ी सी लगाई है। अमर उजाला अखबार में एक छोटी सी खबर और छपी है, मोदी आज काशी में, चूंकि नरेंद्र मोदी आज बनारस आ रहे हैं और
एक खबर है कि फरवरी मार्च में हो सकते हैं चुनाव। अखबार ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है कि फरवरी मार्च में होंगे और पांच राज्यों में जो होने वाले हैं चारों पांचों राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर जी मुलायम टाइम्स माफ कीजिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो अखबार की लीड खबर यही है, अखिलेश मुलायम सिंह यादव इन सैक्रेड एज परिवार टेक्स पार्टी टू पिंक।
तो आज सबकी नजर इस पर रहेगी कि
हाँ मोहनलाल जी मैं जरा सा दैनिक जागरण अखबार की बात करना चाहूंगा जिसमें लीड खबर है सपा में आर पार मुलायम सिंह यादव एक ग्राफिक के जरिए और एक कार्टून के जरिए मुलायम सिंह यादव एक साइकिल पे सवार है जो एक कार्टून बनाया हुआ है उसमें आगे के पहिए में अखिलेश यादव की तस्वीर बनी है हाँ। पीछे के पहिए में शिवपाल यादव की तस्वीर बनी है और पीछे वाला पहिया टूट गया है हाँ। साइकिल का अगला हिस्सा आगे निकल गया है और पिछला टूटा हुआ है मुलायम सिंह
यानी कि खंडित नजर आ रही है साइकिल। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आत्मा मिश्र और मानसी यहाँ पर मौजूद है। मानसी दिल्ली के अखबार सारी बड़ी खबर यही है भाई भतीजे का समाजवाद जनसत्ता कह रहा है। इसके अलावा बहुत संक्षेप में अगर दो खबर मैं आपसे कहूं पढ़े
एक खबर मैं आपको सुना देती हूं। हिंदुस्तान में छपी है ये खबर कहा है केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा को घटाने का फैसला टाल दिया है। परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम आयु अब 32 ही रहेगी। पायोनियर में छपी एक और खबर है जिसके अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कहा है कि गंगा की बदहाली की वजह गलत योजनाएं और संबंध अधिकारियों के अवैज्ञानिक तौर तरीके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी दास और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगली खबरों पर।
नमस्कार भारत शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा में एक रैली के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का दौरा करेंगे। मोदी का वाराणसी दौरा 4 महीने और 23 दिन बाद हो रहा है। मोदी का दौरा उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। उनके पहुंचने से पहले ही बनारस में हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े होर्डिंग और पोस्टर नजर आ रहे हैं और पार्टी एक तरह से चुनावी माहौल की दिशा तय करने की कोशिश में नजर आ रही है। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री के विरोध की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल।
प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी भुनाते दिख रही है क्योंकि पीएम मोदी के होकर गुजरने वाले सभी संभावित रास्तों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की बधाई देने वाले बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा रखा है। हालांकि वाराणसी के DLW मैदान में पीएम मोदी कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के मीडिया प्रभारी संजय भारद्वाज बताते हैं कि
मुख्य रूप से जो परियोजना है वो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गेल के अंतर्गत रसोई गैस को पूर्वांचल और खासकर वाराणसी उनके संसदीय क्षेत्र में पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाने की है। पार्टी की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का कोई बैनर नहीं लगाया गया। कोई उत्साही कार्यकर्ता अगर इस तरीके का बैनर या पोस्टर लगाता है तो वो उसका निजी विषय है।
केंद्र में बीजेपी की सरकार के लगभग 2.25 साल बाद वाराणसी में विकास का पहिया कितना आगे बढ़ा और बीजेपी की ओर से शहर में लगाए गए सर्जिकल स्ट्राइक वाले बैनर होर्डिंग पर क्या कहना है काशीवासियों का सुनते हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक के बोनर पर ऐसा का यहाँ कोई खास औचित्य नहीं समझ में आता है कि इसका कोई खास को किया जाए। इससे देखिए सर्जिकल स्ट्राइक कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी पार्टी वाइज का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता। ये हमारे सेना का सर्जिकल स्ट्राइक है जो हमारी सेना करती है।
वही हर बार की तरह विपक्षी दल कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता पीएम मोदी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यक्रम स्थल से काफी दूर भारत माता मंदिर पर अपना विरोध भी दर्ज कराने की तैयारी में है। पीएम मोदी को संसदीय चुनाव में टक्कर देने वाले और वाराणसी के पिंडरा विधायक अजय राय बताते हैं कि
विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, विकास हमारा सकारात्मक रुख रहता है। बनारस की जो अपेक्षा थी अपने सांसद और प्रधानमंत्री जी से उस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। केवल ख्वाबी पुलाव हो रहे हैं, केवल और केवल जुमलों की बात हो रही है, काम जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी हुई है तो स्वीकार गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, इनके विदेश सचिव ने स्वीकार किया, इनके आर्मी अफसर ने, इसके सेना के आर्मी अफसर ने स्वीकार किया कि आप पिछले भी ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसकी मार्केटिंग नहीं की गई।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी मुद्दे चाहे जो हों, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से मिलने वाले लाभ से बीजेपी का अभी भी मोह भंग होता नहीं दिख रहा। वाराणसी की सड़कों का सर्जिकल स्ट्राइक वाले बैनर होर्डिंग से पटा रहना फिलहाल यही कहानी बयां कर रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल।
उधर झारखंड में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी हितों को लेकर आंदोलन के दौरान पुलिस की फायरिंग के बाद टकराव बढ़ता जा रहा है। 55 दिनों के दौरान 3 अलग अलग जगहों पर हिंसक झड़पों के बीच पुलिस की फायरिंग में 7 ग्रामीण मारे जा चुके हैं, जबकि इन घटनाओं में पुलिस समेत 40 लोग घायल हुए हैं। कई इलाकों में तनाव दहशत है। इन घटनाओं के विरोध में आज संपूर्ण विपक्षी दलों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। क्या है हालात, सुनिए रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
शनिवार को खूंटी में हुई पुलिस फायरिंग में एक आदिवासी की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा उबाल पर है। रविवार को खूंटी बंद रहा और बड़ी तादाद में परंपरागत हथियारों के साथ गांव के लोग जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतरे। शाम में उग्र भीड़ ने खूंटी के उपायुक्त आवास पर तोड़फोड़ भी की। फिलहाल तनाव के हालात हैं। 22 अक्टूबर को रांची में आदिवासी संगठनों की आक्रोश महारैली हुई थी। इसी दौरान खूंटी में आदिवासियों की पुलिस से झड़पें हुई। इससे पहले 1 अक्टूबर को सूबे के बड़का गांव में पुलिस फायरिंग में 3 छात्र और 1 मजदूर की मौत हुई थी। बड़का गांव के किसान जमीन अधिग्रहण की सरकारी कोशिशों का लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि 28 अगस्त को रामगढ़ के गोला में विस्थापन के सवाल पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस की फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे। इन्हीं सवालों पर तमाम विपक्षी दल और आदिवासी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। गांव कस्बों से शहरों तक रैली, विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस का दौर जारी है। सोमवार को झारखंड बंद का विपक्षी दलों ने ऐलान किया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक सुखदेव भगत कहते हैं,
अत्याचारी निरंकुश हो गई है और तानाशाह हो गई है, और यहाँ पे अगर संवाद की जगह जनता के लिए सरकार ने संवाद की जगह गोली चला रही है, जो अवैध तरीके से भूमि जो हापना चाहती है, इसके लिए हम लोगों ने पूरे ऑल पार्टी हम लोगों ने बंद बुलाया है।
जबकि कई मंचों से राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास कहते रहे हैं कि गरीबी खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है, विकास के काम को गति देने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हो रहा है तथा इन्हीं मकसद से कुछ कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है, लेकिन आदिवासी संगठनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी की सरकार पूंजी निवेशकों के लिए रास्ते बना रही है और पहले से ही विस्थापन का दर्द झेल रहे आदिवासियों के सामने नए सिरे से जमीन छीन जाने का खतरा है।
भाजपा का बहुमत की सरकार, भाजपा कहती है हम झारखंड का विकास करेंगे, ये बहुमत की सरकार आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन, घर, सरना, मसना, हड़गड़ी जैसा वाली भूत खेता डाली का सारी पानाई, ये सारा जमीन, सारा पहचान को खत्म करके आदिवासियों को जो है कि यहाँ निश्चय नाबूद करना चाहती।
बहरहाल फैसले और पुलिस फायरिंग को लेकर सरकार के खिलाफ गोलबंदी की कवायद तेज है और इसके साथ ही सियासत गर्म है। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
मोहाली में खेले गए मौजूदा सीरीज के तीसरे वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 286 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 48.2 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर यह मैच जीत लिया। भारत की ओर से इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली और टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। आज समय की कमी के चलते अपना साप्ताहिक स्तंभ यानी कि खेल और खिलाड़ी और साथ में वसतुल्लाह खां की डायरी अगले प्रसारण यानी कि विश्व भारती में आपको सुनाएंगे, इसलिए कार्यक्रम सुनना कतई मत भूलिएगा। इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। कतर के पूर्व आमिर शेख खलीफा बिन हमद अल थानी की मौत हो गई है। वे 84 साल के थे। शेख खलीफा कतर पर साल 1972 से साल 1995 तक शासन किया। भारत के उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित करने और शिवपाल यादव और उनके समर्थक मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद पार्टी में संकट गहरा गया है। मौजूदा संकट के बीच आज पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक बैठक बुलाई है। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। एक घंटे बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।